بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ناظرین, پروگرام میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. آج بھی ہم حسب معمول ہفتے کے اہم واقعات اور تغیرات پر تجزیاتی نظر ڈالیں گے. تو سب سے پہلے آئیے ملاحظہ فرمائیے ہماری آج کی گفتگو کے عناوین.
پابندیوں کے خلاف ایران کا ایک اور اقدام. قطر میں امریکی اینٹی میزائل سسٹم کے ریڈاروں کی تنصیب. پاکستان کے وزیراعظم کا دورہ کابل. میانمار کے مسلمانوں کا قتل عام. شام کی تازہ ترین صورتحال.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zaviya_nigah@sahartv.ir.
ناظرین, اسلامی جمہوریہ ایران نے اعلان کیا ہے کہ اس کی بیمہ کمپنیاں ایران کی بحری حدود میں سفر کرنے والے بحری جہازوں کو بیمہ کوریج فراہم کرنے پر آمادہ ہیں. مغربی ممالک کی جانب سے ایران پر عائد کی گئی پابندیوں کے جواب میں یہ ایران کا اہم اقدام ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
ایران کے محکمہ پورٹ اینڈ شپنگ کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ ایران اپنی سمندری حدود میں سفر کرنے والے غیر ملکی بحری جہازوں کا بیمہ کرنے کے لیے تیار ہے. بدھ کے روز نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے محکمہ پورٹ اینڈ شپنگ کے مینیجنگ ڈائریکٹر عطا اللہ صدر نے کہا کہ تسلط پسند طاقتیں یہ سمجھتی ہیں کہ پابندیوں کے ذریعے ایران کی سمندری حمل و نقل کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. حالانکہ حکومت ایران نے ملکی بیمہ کمپنیوں کے تعاون سے مناسب بیمہ پالیسیاں تیار کر کے شپنگ لائن کو بہترین بیمہ کوریج فراہم کر دی ہے. ایران کی شپنگ کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر محمد حسین داجمر نے بھی اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ یورپ کی جانب سے عائد کی جانے والی پابندیوں کے بعد کمپنی نے اپنی سرگرمیوں کو ایشیا سمیت دیگر ملکوں کی جانب مرکوز کر دیا ہے, اور یوں ہم نے بحران کے اس دور میں سمندری حمل و نقل کی نئی منڈی تلاش کر لی ہے. محمد حسین داجمر کے بقول ایران شپنگ کمپنی نے نرخوں میں کمی اور سروسز میں اضافہ کر کے اپنی خالی گنجائش کو کافی حد تک پر کر لیا ہے. ایران شپنگ کمپنی نے زبردست انتظامی تبدیلیوں کے ذریعے عالمی منڈیوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا ہے. یہ پوزیشن ایسے وقت میں اسے حاصل ہوئی ہے جب مغرب نے ایرانی تیل کی صنعت اور مواصلاتی راہوں کا بائیکاٹ کر رکھا ہے تاکہ بزوم خیش ایران کی معیشت مشکلات سے دوچار کیا جائے. ایران کی جانب سے اپنی سمندری حدود میں سفر کرنے والے جہازوں کو بیمہ کوریج دیے جانے کے عمل نے ایک بار پھر مغرب کی عائد کردہ پابندیوں کو غیر مؤثر کر دیا ہے. مغربی ملکوں نے امریکہ کی پیروی کرتے ہوئے 1 جولائی سے ایران کے تیل کی خریداری اور ایرانی تیل لے جانے والے آئل ٹینکروں کو بیمے کی فراہمی پر پابندیاں عائد کر دی ہیں. لیکن ایران کی اسٹریٹجک پوزیشن براعظم ایشیا کے مختلف علاقوں, خاص طور سے مشرقی ایشیا کے تیل کی نئی منڈیوں تک آسانی کے ساتھ رسائی نے مغرب کی جانب سے عائد کی جانے والی پابندیوں کو تاحال ایرانی تیل کی فروخت میں کوئی خلل ڈالنے نہیں دیا ہے. بعض ملکوں کے ایرانی تیل و گیس کے ساتھ وابستگی کے علاوہ تیل کی فروخت کے دوسرے ذرائع نے مل کر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ایرانی تیل کو عالمی منڈی سے ہرگز باہر نہیں کیا جا سکتا.
ناظرین, امریکہ نے اپنے میزائل ڈیفنس سسٹم سے تعلق رکھنے والے ریڈار کی تنصیب کے لیے قطر میں ایک خفیہ اڈہ تلاش کر لیا ہے. امریکہ دنیا کے مختلف علاقوں کی طرح خلیج فارس میں بھی میزائل ڈیفنس سسٹم نصب کرنے کی کوشش میں ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
امریکہ حالیہ چند برسوں سے ایک بڑے منصوبے کے تحت عالمی اینٹی میزائل سسٹم قائم کرنے کی فکر میں رہا ہے. اس منصوبے کے تحت اب تک اس نے یورپ اور مشرقی ایشیا میں کئی اینٹی میزائل سسٹم نصب کر دی ہیں. इसी तरह का एक एंटी मिसाइल रडार सिस्टम इसराइल में नस्ब किया गया है और अब अमरीका खलीज फारस के जनूबी साहिली मुल्कों के ताबुन से ऐसा ही एक और सिस्टम इस इलाके में नस्ब करने का इरादा रखता है। अमरीकी अखबार ने इस हवाले से लिखा है कि अमरीका ने कतर में एंटी मिसाइल सिस्टम की तंसीब के लिए खुफिया अड्डा कायम कर लिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ये खुफिया अड्डा जो अभी तामीर के मराहिल से गुजर रहा है खित्ते में अमरीकी मफादात के तहफ्फुज़ के लिए कायम किए जाने वाले एंटी मिसाइल सिस्टम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और इसकी तंसीब से मुमकिन मिसाइल हमलों से इत्तेहादियों को बचाने का निजाम मुकम्मल हो जाएगा। काबिले जिक्र बात यह है कि अमरीका नई फौजी स्ट्रेटजी के तहत जो ईरान और चीन की जानिब से मुमकिन खतरात के मुकाबले पर उस्तवार है एशिया व बहरुल काहिल और मशरिक वुस्ता के इलाके में अपनी फौजी कुव्वत के एक बड़े हिस्से को मरकूज करना चाहता है। खास तौर पर इसलिए भी कि अमरीका और उसके यूरोपीय इत्तेहादियों की जानिब से बैंकारी और तेल पर आयात की जाने वाली एकतरफा पाबंदियों के नतीजे में जिस पर ईरान रद्दअमल दिखाने पर मजबूर हुआ है अमरीका खलीज फारस में अपनी कुव्वत में इजाफा करके इस खित्ते के जनूबी साहिली अरब मुल्कों के साथ फौजी और सिक्योरिटी तआवुन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कतर में रडार सिस्टम की तंसीब को इस प्रोग्राम का आखिरी मरहला तसव्वुर किया जा रहा है। इसी तरह का एक और रडार सिस्टम 2008 में सहराए नकब के इलाके क्रन में नस्ब किया जा चुका है और इसी तरह का दूसरा सिस्टम नेटो की मिसाइल शील्ड प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर तुर्की में नस्ब किया गया है। दूसरी जानिब एक अमरीकी अहदेदार ने कहा है कि मशरिक वुस्ता और जनूबी एशिया में अमरीकी ऑपरेशनल कमांड आइंदा चंद माह के दौरान थेट किस्म के एंटी मिसाइल सिस्टम का पहला यूनिट नस्ब करने का इरादा रखती है और कभी इम्कान ये है कि ये सिस्टम मुत्तहिदा अरब इमारात में नस्ब किया जाएगा। माहिरीन का कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने के बहाने नस्ब किए जाने वाले एंटी मिसाइल सिस्टम की वजह से एशिया और मशरिक वुस्ता के इलाके में अमली तौर पर असलहे की दौड़ शुरू हो जाएगी, जबकि आदाद व शुमार इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि सन 2012 में बर्रेआज़म एशिया के फौजी अखराजात यूरोप से भी ज्यादा हो जाएंगे। ये बात मशरिक वुस्ता के लिए भी सच्ची साबित होगी क्योंकि खलीज फारस के अरब मुल्कों में एंटी मिसाइल सिस्टम की तंसीब या अरब मुल्कों में ऐसे निजाम की तंसीब का शौक दिलाने से इन मुल्कों के फौजी अखराजात और असलहे की दौड़ में इजाफा होगा और बैरूनी ताकतों की मुदाखलत का रास्ता भी मजीद हमवार हो जाएगा।
नाज़रीन पाकिस्तान के वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने इस हफ्ते अफगानिस्तान का दौरा किया। मौजूदा हालात के पेश नजर पाकिस्तानी वजीर आजम के दौरे काबुल को खास अहमियत दी जा रही है। मुलाजा फरमाइए पाकिस्तान के सीनियर तज़िया निगार रहीमुल्ला यूसुफ जई का तबसरा।
लेकिन पहली बार इस किस्म का इजलास हुआ है। बरतानिया के वजीर आजम कैमरून भी चूंकि अफगानिस्तान में थे, पाकिस्तान के नए वजीर आजम भी अपने पहले दौरे पर अफगानिस्तान गए थे, तो मेरे ख्याल में उन्होंने मौके से फायदा उठाया। शायद पहले से भी इनका इस तरह का इरादा था और ये सिर्फ फरीक इजलास हुआ है। इसके बारे में तो बरतानिया के वजीर आजम काफी पुरुमीद है, वो कह रहे हैं कि इसमें अच्छी बातचीत हुई है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है वो आपस में अमन के लिए तावन करेंगे, बरतानिया भी साथ देगा, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ कहना तो आसान है, इसके ऊपर अमल दरामद कैसे होगा? और देखिए ये ऐसे हालात में इजलास हुआ है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर के ऊपर कुछ कशीदगी है। अफगानिस्तान ने तो यहाँ तक कह दिया है, धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी हो रही है और कुनल में जो गोले गिर रहे हैं जिससे अफगान हुकूमत के बकौल कुछ लोग मरे हैं और कुछ जख्मी हुए, कुछ बेघर हुए, तो वो कह रहे हैं कि अगर ये गोलाबारी बंद नहीं हुई तो इस मामले को वो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाएंगे। पाकिस्तान भी शिकायत कर रहा है कि अफगानिस्तान के इलाके से उसके अरलाम है और कबायली इलाकों में दीर में बाजोड़ में और मोहम्मद में हमले हो रहे हैं, चित्राल में हमले हो रहे हैं, तो इस तरह के इल्जाम तराशी भी हो रही है और ये मामला हल नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में एक तरफ तो कशीदगी है, दूसरी तरफ ये सैफ फरीकी इजलास हुआ और इसके बारे में काफी उन्होंने जो बातें की वो बड़ी पुरुमीद है। लेकिन मेरे ख्याल में जब तक बुनियादी मसले हल नहीं होंगे उस वक्त तक आपस में ताउन करना अफगानिस्तान और पाकिस्तान का या बरतानिया का ये काफी मुश्किल होगा।
नाज़रीन, म्यांमार में बसने वाले मुसलमानों को बड़ी बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इन मुसलमानों के कत्ले आम पर, जिनमें अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। लिहाजा फरमाइए हमारा तबसरा।
हालिया महीनों में म्यांमार के मुसलमान किसी भी कौम या नस्ल से ज्यादा कौमी और मजहबी कत्ले आम का निशाना बने हैं। चंद मुसलमानों पर इल्जाम के बहाने म्यांमार के मगरब में वाकई सूबे राखीन में इंतहा पसंद बुद्धिस्टों ने 100 से जायद मुसलमानों का वहशियाना तरीके से कत्ले आम किया। म्यांमार की बरसरे इक्तदार गैर फौजी हुकूमत मुल्क के सैकड़ों मुसलमानों के कत्ले आम और उनके बेघर होने के हवाले से किसी किस्म की जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर रही है, और अब तक किसी किस्म की कोई ऐसी रिपोर्ट भी या दस्तावेज सामने नहीं आ सकी है जिससे पता चलता हो कि म्यांमार की हुकूमत ने मुसलमानों की मुश्किलात और मसाइल को दूर करने के लिए कोई कदम उठाया हो। इंसानी हुकूक की अक्सर तंजीमों और इदारों ने भी मुसलमानों के कत्लेआम के हवाले से अपनी आंखें बंद कर रखी हैं और किसी जानिब से इंसानी हुकूक की दुहाई नहीं दी जा रही। मुसलमानों के कत्लेआम और उनके घरों और दुकानों को मिसमार किए जाने के वाकयात में होने वाला इजाफा अगरचे आलमी जमीर को पूरी तरह से झंझोड़ने की कोशिश कर रहा है, मगर आलमी रायम्मा टस से मस होती दिखाई नहीं दे रही। क्या इन तंजीमों और म्यांमार की हुकूमत का ताल्लुक से काम लेना इस वजह से है कि म्यांमार के मुसलमान कौमी शनाख्त से महरूम है और किसी भी अकलियत के दायरे में नहीं आते? शुरू शुरू में ऐसा महसूस किया जा रहा था कि म्यांमार में रूनमा होने वाली तब्दीलियों ने मुल्क के समाजी ढांचे में ऐसी दरारें डाल दी हैं जिसके नतीजा इंसानी जानों के ज़िया की सूरत में सामने आ रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बुद्धिस्ट आबादी म्यांमार की मरकजी हुकूमत की ईमा पर मुसलमानों का कत्लेआम कर रही है। लेकिन अगर म्यांमार की हुकूमत और बोधाई खुद ये ऐलान करें कि मुसलमानों के हवाले से किसी भी खयानत और जराइम के मुर्तकिब नहीं हुए हैं, तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि म्यांमार के मुसलमानों को किस जुर्म की सजा दी जा रही है। तवक्को की जा रही थी कि बोधाई इज्म निर्वाण से इल्हाम लेते हुए दूसरों के साथ मेहरबानी और मोहब्बत के अलावा कोई और सलूक नहीं करेगा। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि बोधा के मुजस्मों को अमरीकी डॉलरों के साथ तालिबान और दीगर इंतहा पसंद ग्रोहों ने मिसमार किया था, तो बहुत से मुसलमानों और उनके रहनुमाओं ने तालिबान के इस अमल को नापसंदीदा भी करार दिया था। सदियों से थाईलैंड के मुसलमान इस मुल्क के बोधाइयों के साथ पुरअमन जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन इस मुल्क की सियासी तब्दीलियों के साथ ही वहाँ भी मुसलमानों को निशाना बनाया जाने लगा है। इसकी एक वजह ये बताई जा रही है कि मुसलमान जहाँ कहीं भी हों इंतहा पसंद होते हैं, और ये वही पॉलिसी है जिस पर अब तक मगरिब बड़े जोर शोर के साथ अमल करता चला आया है कि करोड़ों हुर्रियत पसंद मुसलमानों और मुठ्ठी भर इंतहा पसंदों के दरमियान कोई फर्क नहीं है।
और नाज़रीन, अब आखिर में शाम की ताज़ा सूरतेहाल। नाज़रीन, शाम में सूरतेहाल ये है कि चंद मुसल्लह गुरोह जिन्हें मगरबी ममालिक और इलाके के बाज़ ममालिक की असलाह जाती और माली इमदाद हासिल है, मुख्तलिफ इलाकों में हमले कर रहे हैं, और उन्होंने हालिया दिनों में दारुल हुकूमत दमिश्क को निशाना बनाया और दारुल हुकूमत दमिश्क में कौमी सलामती के इदारे की इमारत में एक धमाका किया। इसके अलावा दमिश्क का इलाका हयुल मैदान इन अनासिर की रेशादवानियों का निशाना बना और झड़पें शुरू हुई। ताहम ताज़ा इत्तलात ये हैं कि फौज ने इन अनासिर को इलाके से बाहर कर दिया। दारुल हुकूमत से अनासिर बाहर जा चुके हैं और इस दौरान मुतादिद दहशतगर्द मारे गए और दर्जनों को गिरफ्तार किया गया। दर्जनों अफराद गिरफ्तार हुए हैं और अब ये अनासिर दमिश्क से बाहर भगाए जा चुके हैं। नाज़रीन, ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है जनाब गुलशन अब्बास नकवी साहब को। السلام علیکم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے.
شکریہ آپ کا جی، آپ نے ایک مرتبہ پھر موقع فراہم کیا.
گلشن عباس نقوی صاحب، یہ جو صورتحال جاری ہے، ایک طرف کوفی عنان صاحب کی کوشش یہ ہے کہ پرامن طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے، لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مغربی ممالک، ایک طرف تو وہ سلامتی کونسل میں قرارداد لے آتے ہیں اور شام کے خلاف بار بار، جبکہ ویٹو کی جا رہی ہے روس اور چین کی طرف سے، اور دوسری جانب ان ممالک کے حمایت یافتہ مسلح گروہ شام میں بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے ہیں. دارالحکومت دمشق کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا. آپ اس صورتحال میں کیا تبصرہ کریں گے؟
صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے دوسرے اتحادی ممالک، مغربی ممالک جو ہیں خاص طور پر، اور صہیونی حکومت بالاخص، یہ اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے یہ ساری متشددانہ اور تشدد آمیز کارروائیاں انجام دے رہے ہیں، اور اسی کا ہم دیکھتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ بدھ کے دن جو ہے وہ شام میں جو قومی سلامتی کا جو ادارہ ہے، نیشنل بیورو کا جو ادارہ ہے، اس میں دھماکہ کیا گیا. تو یہ امریکہ اور دوسرے ممالک جو ہیں بہرحال وہ اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے یہ ساری کاروائیاں کر رہے ہیں، اور اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو دعوے کیے ہیں اور جو ہمیشہ سے دعوے کرتے رہتے ہیں انسانی حقوق کے اور جمہوریت کے، تو ان کا برخلاف اور ان کا متضاد ہمارے سامنے جو ہے وہ کھل کر سامنے آیا ہے، اور امریکہ کی وہ ماہیت جو حقیقی ماہیت ہے وہ کھل کر سامنے آئی ہے. اس کے چہرے پہ جو انسانی حقوق کے دفاع کا اور جمہوریت کے دفاع کا جو نقاب تھا وہ اب اتر گیا ہے اسی صورتحال میں. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہاں پر کوفی عنان کی جو تجویز ہے وہ بڑی اچھی تجویز ہے شام کا بحران حل کرنے کے تناظر میں، اور بہت سے جو دنیا کے جو منصف ممالک ہیں جو واقعی چاہتے ہیں کہ شام کا بحران حل ہو، وہاں پر امن قائم ہو، سلامتی جو ہے وہ وہاں پر لوٹے، امن و امان وہاں پر قائم ہو اور بحران وہاں کا حل ہو اور دہشت گردی کا خاتمہ ہو، تو وہ تمام ممالک جو ہیں وہ کوفی عنان کی تجویز کی حمایت کرتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں مغرب اور امریکہ خاص طور پر وہ بڑے ڈٹے ہوئے ہیں کہ، اور انہوں نے پوری کوشش بھی کی، یعنی جب سے کوفی عنان نے اپنی چھ نکاتی تجویز پیش کی تو اگرچہ بظاہر انہوں نے ٹائم دیا، مہلت دی کہ اس کے بارے میں بحث کی جائے، اور کوفی عنان کو بھی مختلف، کوفی عنان نے بھی مختلف ممالک کے دورے کیے، اور ظاہری طور پر امریکہ کی جانب سے یہ مہلت فراہم کی گئی کہ کوفی عنان کی جو تجویز ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ درپردہ اور حقیقت میں جب سے کوفی عنان نے اپنی تجویز پیش کی اسی وقت سے امریکہ اور دوسرے جو ممالک اس کے جو اتحادی ہیں، مغربی ہوں یا خطے کے جو عرب ممالک ہیں، انہوں نے کوفی عنان کی تجویز کو ناکام بنانے کی پوری کوشش کی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کوفی عنان کی تجویز کے تحت ہی شام میں 300 عالمی مبصرین جو ہیں وہ وہاں پر آئے اور ان کا مشن جو ہے وہ جاری رہا، لیکن امریکہ اور دوسرے اس کے اتحادی ممالک نے حتیٰ کہ ان افراد کو بھی وہاں پر کام نہیں کرنے دیا. اقوام متحدہ کے وہ جو 300 مبصر تھے ان کے کام کی راہ میں بھی رکاوٹیں کھڑی کی، حتیٰ کہ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ خود شام کی حکومت جو ہے بشار اسد جو ہیں اور ان کی جو حکومت ہے اس نے بھی کئی مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، اور متعدد حکام نے کہا کہ ہم کوفی عنان کی تجویز پر عمل کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں، اور انہوں نے اسی جو تجویز تھی اسی کے تحت اپنی فوجیں جو ہیں وہ مختلف شہروں سے باہر نکال لیں، چونکہ اس تجویز میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ حکومت جو ہے وہ مختلف شہروں سے اپنی فوجیں نکالے. تو شام کی طرف سے، بشار اسد کی طرف سے پوری کوشش کی گئی کہ کوفی عنان کے ساتھ تعاون کیا جائے، اقوام متحدہ کے ساتھ تعاون کیا جائے، اور ان کی جو تجویز ہے اس کے مطابق شام کا بحران جو ہے وہ حل کیا جائے. لیکن چونکہ سامراجی ممالک جو ہیں ان کے اپنے خاص مقاصد ہیں، ان کا اپنا خاص ایجنڈا ہے، تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ چاہے کوفی عنان کی تجویز جو ہے اس پر عمل درآمد نہ ہو، وہ ناکام ہو جائے، چاہے جو ہے سلامتی काउंसिल जो है उसमें भी किसी तरह दबाव डालकर उनको अपने मकासद हासिल करना पड़े तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने मकासद को हासिल करने के लिए। और सबसे बड़ा मकसद मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका का जो है अलबत्ता मुख्तलिफ उनके मकासद हैं, गुनागु मकासद हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा या सबसे बड़ा उनका मकसद जो है वो इस खिते में इसराइल का तहफ्फुज़ है।
जी
क्योंकि आप देखें कि जब से इस्लामी बेदारी की तहरीक इस खिते में शुरू हुई है तब से इसराइल खिते में और दुनिया भर में अलग थलग होकर रह गया है।
बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन हमारे साथ नई दिल्ली स्टूडियो से जनाब रिजवान कैसर साहब है। जनाब प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। जी रिजवान कैसर साहब
आपका शुक्रिया।
रिजवान कैसर साहब दमिश्क में कौमी सलामती की के इदारे की इमारत में धमाका हुआ जिसमें शाम के वजीर दिफा और नायब वजीर दिफा और इसी तरह दीगर ओहदेदार निशाना बने और मारे गए। इस दहशतगर्दाना वाक़े पर जहां रूस चीन और ईरान जैसे ममालिक ने इसकी मजम्मत की वहीं अमरीका बरतानिया फ्रांस और इन मुल्कों ने इस हमले में जिसमें इस हमले की मजम्मत में एक लफ्ज नहीं कहा जिसमें वजीर दिफा और नायब वजीर दिफा और इस तरह के आला ओहदेदार निशाना बने। आप क्या कहेंगे?
जाहिर सी बात है कि ये जो हमला हुआ है इस पे अमेरिका की तरफ से मजम्मत के अल्फाज आने की कोई उम्मीद मेरे ख्याल में बेजा उम्मीद है। इसलिए कि अगर आप देखें तो खुद अमेरिका की जो पुष्ट बनाई है और अमेरिका के जैसा अभी नकवी साहब भी कह रहे हैं कि जो इत्तेहादी लोग हैं उनकी जो पुष्ट बनाई है जब वो ऐसी पुष्ट बनाई दे रहे हैं असलहे की फराहमी कर रहे हैं और इन्हें कई मानों में उकसाया भी जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि मजम्मत के अल्फाज की उम्मीद बहुत मुनासिब नहीं है। हां इतनी बात जरूर की जा सकती है कि शाम की सरकार की तरफ से जितने हिफाजती इकदाम उठाए जाने चाहिए थे वो शायद इस मौके से नहीं उठाए जा सके जिसकी वजह से सरकार की जो पूरी इमेज है उसको धक्का पहुंचा है कि वजीर दफा और नायब वजीर दफा और दीगर तमाम सारे ऐसे अरकान जो बम के शिकार हुए ऐसा क्यों हुआ और वो भी खासतौर से दमिश्क के अंदर नेशनल सिक्योरिटी के जो बिल्डिंग है ऐसी जगहों पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को भी नए जाविये से सोचना पड़ेगा कि हालात काफी संगीन है, चैलेंज जो है वो काफी बड़ा है। लेकिन इससे मुकाबले की एक सूरत दूसरी भी है जिसकी तरफ अभी नकवी साहब भी इशारा कर रहे थे और दुनिया के ज्यादातर लोग जो मुतवाजन अंदाज से सोचते हैं उनका यह कहना है कि शाम में पिछले 15-16 महीनों में जो हालात पैदा हुए वो खत्म चाहिए और जो डायलॉग का सिलसिला कोफी अन्नान ने जिस तरह से फॉर्मूला बताया है उसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, कैसे वहां लागू किया जाए। कुछ लोगों का यह कहना कि शाम की मौजूदा सरकार जिसमें बशर अल असद और उनके दूसरे जो अरकान हैं ये किसी तरह से भी शामिल नहीं हूं तो बुनियादी तौर पर जमीनी हकीकत से इनकार करने जैसा है। अगर शाम में अमनो अमान बहाल हो तो उसकी शरायत कोफी अन्नान के हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन अभी एक और दूसरा मरहला ये पेश दरपेश है कि दरअसल शाम के मुद्दा अकेला शाम के अंदर के हालात नहीं है बल्कि जो बैनुल अक्वामी सियासत के जो नए नए जाविये हर रोज खुल रहे हैं जिसमें एक तरफ अमेरिका और उसके इत्तेहादी जिस तरह से मुदाखलत करना चाहते हैं लेकिन काफी लंबे वक्त से शाम का रूस के साथ और रूस जब रूस से पहले यूएसएसआर था उस वक्त से अब तक के जो ताल्लुकात हैं चीन से जो ताल्लुकात हैं ये तमाम सारे लोग अभी भी शाम की सरकार के लिए एक तरह से ढाल बने हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनकी ढाल के पीछे जो बैनुल अक्वामी सियासत की जो पावर रिलेशनशिप है वो भी हमारे सामने है और इन सब से बाहर निकल करके एक पहली जरूरत ये निकल करके आती है कि शाम के अंदर अमन व अमान बहाल हो और वहां इस किस्म के दहशतगर्दाना हमले ना हो। सरकार की तरफ से भी जो ऐसे सख्त इकदाम उठाए जा रहे हैं जिसकी वजह से हालात और जरा सा मुश्तैल होते हैं, दोनों कहीं ना कहीं डायलॉग के टेबल पर आए, गुफ्तगु हो और शाम के मसाइल का हल निकले।
जी गुलशन अब्बास नकवी साहब, हम ये देख रहे हैं कि शाम की फौज काफी मजबूत फौज रही है
जी,
और इसकी एक बहुत बड़ी दलील ये है कि इसने इसराइल का सामना किया है, इसराइल का मुकाबला किया है कामयाबी से। अरब ममालिक में शाम की इमेज साम्राज्य मुखालिफ इमेज रही है
जी,
और इस्लामी मुजाहमत में इसका किरदार बहुत अहम रहा है। इन मुसल्लह ग्रोहों के सिलसिले में जो इस वक्त सरगर्म है शाम में, हम ये देख रहे हैं कि फौज काफी सब्र व तहम्मुल का सामना मुजाहरा कर रही है
जी,
आपका क्या तबसरा है?
उसकी वजह यह है कि जैसा कि मगरबी मीडिया जो है, अमरीकी मीडिया और सहूनी मीडिया जो है, वो आप जानते हैं कि जब से मार्च 2011 से ये शाम में बदमनी के वाकयात शुरू हुए हैं, उस वक्त से अब तक वो यही तासुर दे रहे हैं और राय आमा को गुमराह करने के लिए ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि शाम के अंदर जो भी तशद्दुद और बदमनी पाई जाती है उसकी वजह जो है वो शाम की हुकूमत है, फौज है और बशार असद हैं। तो जाहिर है कि सहूनी जो ज़राए ब्लाग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं बहरहाल, तो इस प्रोपेगेंडे को ख़त्म करने के लिए भी मैं ये समझता हूँ कि शाम की फौज जो है और शाम की हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, और वो ये बावर कराना चाहती है आलमी रायामा को कि हमारी तरफ से तशद्दुद जो है वो नहीं हो रहा है, और हकीकत जो है वो ये है कि शाम के अंदर जो तशद्दुद जारी है वो मुसल्ला दहशतगर्द ग्रोह कर रहे हैं जिनको बाज़ अरब ममालिक की हिमायत हासिल है और यूरोपी ममालिक जिनको हर तरह की हिमायत हासिल है असला दे रहे हैं, हत्ता कि फौजी हिमायत और इंटेलिजेंस हिमायत जो है वो भी उनको हासिल है। और जहाँ तक ये वाकया पेश आया है बुध के दिन का, तो उसमें भी बहुत सारे मुबस्सिरीन का कहना ये है कि अलकायदा से भी ये तवक्को नहीं की जा सकती, यानी जिस तरह का वहाँ पर धमाका हुआ है या जो बड़े पैमाने पर जो ये वाकया हुआ है, तो अलकायदा जैसी एक मुनज़्ज़म दहशतगर्द तंजीम जो है वो भी कादिर नहीं है कि इस तरह का वाकया वहाँ पर अंजाम दे सके। तो यकीनन इसमें जो है खुद नेटो के जो बड़े बड़े जर्नैल हैं उनको मुलव्वस बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई जो है ये बड़े पैमाने पर अगर की गई है तो इसके पीछे भी बड़ी ताकतें जो हैं वो मुलव्वस हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक वजह जो है वो यही है कि बशार असद की हुकूमत अब तक सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा कर रही थी, उसकी वजह यही थी कि वो आलमी रायामा को बावर कराना चाहती थी और हकीकत को सामने लाना चाहती थी कि तशद्दुद का सबब कौन है। लेकिन अब हम देखते हैं कि वजीर दिफा के मारे जाने के बाद बशार असद ने एक नया वजीर दिफा मुकर्रर कर दिया है, और उसके बाद फौज ने एक सख्त बयान भी दिया है। फौज का बयान जो है वो खुद नए वजीर दिफा फहद जासिम ने पढ़कर सुनाया है, और उसमें उन्होंने ये जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं, जो मुसल्ला ग्रुप हैं दहशतगर्द जो शाम में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां अंजाम दे रहे हैं, उनको मुखातब करके कहा है कि तुम लोग ये मत समझो कि ये वाकया अंजाम देकर या इस तरह की कार्रवाइयां अंजाम देकर तुम फौज के हौसले पस्त कर सकोगे या मिल्लत शाम के हौसले पस्त कर सकोगे या मिल्लत शाम को शिकस्त दे सकोगे, बल्कि नहीं, बल्कि अब हमारा जो असम है वो ज़्यादा रासिख हुआ है कि हम दहशतगर्दी का अपने मुल्क से खातिमा करेंगे। तो फौज जो है उस वाकये के बाद ज़्यादा पुरज़्म हुई है दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए, और मैं ये समझता हूँ कि एक तरह से अगर देखा जाए एक और पहलू से तो बड़ी एक पेचीदा और एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो सामने आने वाली है आइंदा चंद दिनों में, ख़ास तौर पर अगर अमेरिका ये डटा रहा और सहूनी हुकूमत या दूसरे अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं वो डटे रहे इस बात पर कि शाम में फौजी कार्रवाई होनी चाहिए, तो फिर एक बहुत ही हसास मरहला जो है वो शाम में सामने आने वाला है।
जी रिजवान कैसर साहब, जो मौजूदा सूरत हाल है और दहशतगर्द और मुसल्ला ग्रोह जिस तरह से शाम में कार्रवाइयां अंजाम दे रहे हैं और जवाबी कार्रवाई फौज कर रही है, اور دوسری طرف کوفی عنان صاحب کی تجویز ہے, امن کی تجویز جس پر عمل درآمد کی کوشش ہو رہی ہے, لیکن ان کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے بھی بعض ممالک سرگرم عمل ہیں. اس طرح سے آئندہ کا منظرنامہ کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ ہمارے پاس دو منٹ کا وقت ہے.
جی, دو منٹ میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شام صہیونی طاقتوں کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح سے کافی دنوں سے ہے. شام نے اپنی داخلی یا خارجہ پالیسی میں امریکہ کی کبھی بھی پشت پناہی نہیں کی ہے, ایک آزادانہ مزاج رکھا ہے, اور کافی لمبے دنوں سے جیسا پہلے بھی کہا کہ یو ایس ایس آر اور اب روس کے ساتھ اس کے بہت گہرے تعلقات رہے ہیں. یہ وہ تمام ساری باتیں ہیں جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو قطعی پسند نہیں ہیں. کہیں کہیں اس میں حزب اللہ کا بھی ایک پہلو آتا ہے کہ جس طرح سے لبنان میں حزب اللہ کی پشت پناہی شام میں رہنے والے کچھ ایک طبقوں کی طرف سے اسے ہے, جس کا سیدھا سیدھا راستہ جو ہے راستہ تار جوڑ کر کے دیکھتے ہیں شام کی سرکار سے, جبکہ اس کے زیادہ ثبوت نہیں ہیں. یعنی ایک طرف شام کے سامنے جو بڑے چیلنجز ہیں وہ اندر سے بھی ہیں اور باہر سے بھی ہیں. یعنی اندر میں جن لوگوں نے شام کی سرکار کی مخالفت کے نام پر جو وہاں پر حالات پیدا کیے ہیں, یہ بات بالکل صحیح نقوی صاحب نے یہ کہی کہ ویسٹرن میڈیا کا پروپیگنڈا کا ایک بڑا پہلو ہے کہ وہاں سرکار کی طرف سے تشدد کے واقعات کو زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے, جبکہ ان تمام سارے لوگوں کے جو دہشت گردی کا جو پورا ایک مزاج نکل کر کے آیا ہے اس کو کم کیا جاتا ہے. لیکن کل ملا کر کے یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر امن و امان قائم ہو اور شام اپنے جس شان و شوکت سے پورے عرب ممالک کے درمیان اور پوری دنیا میں اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے وہ بحال ہو. لیکن اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ سماج کے ہر طبقے کی طرف سے کوفی عنان کے فارمولے کو فوراً لاگو کرنے کی کوشش کی جائے. اگر نہ کیا اور اجر جو ڈر ہے کہ امریکہ کی طرف سے مداخلت کی سیاست شروع کر دی جائے گی جس کے لیے پوری تیاریاں چل رہی ہیں, ہلری کلنٹن بار بار اس بات پر زور دے رہی ہیں کہ بشار الاسد حکومت سے مستعفی ہو جائے, تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا ان کا نظریہ دیگر اور ممالک میں جو حالات پیدا ہوئے وہ نہیں تھا. یعنی اس کے پیچھے صاف یہ دکھ رہا ہے کہ لمبی سوچی سمجھی سازش بھی ہے اور ایسے تمام سارے عناصر کی پشت پناہی بھی ہے. لیکن میرا ذاتی طور پر یہ ماننا ہوگا کہ شام کی حکومت کے لیے خاص طور سے بشار الاسد ایک خاص قسم کی وراثت پائی ہے انہوں نے حافظ الاسد سے لے کر کے آج تک. اس کے پیش نظر امن و امان بحالی کیسے کیا جائے اس کے لیے فوری کاروائی کی جائے تاکہ دنیا کی ایسی طاقتوں کو
بہت
شام میں مداخلت کرنے کا موقع نہ ملے. اس لیے کہ ابھی حالیہ دنوں میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی مداخلت کے نتائج بہت ہی خطرناک آئے ہیں, خواہ وہ عراق ہو یا پچھلے دنوں لیبیا کے بھی حالات جس طرح سے ہمارے اور آپ کے سامنے
بہت بہت شکریہ جناب,
وہ بہت اچھے نہیں ہیں.
بہت شکریہ ناظرین, آپ نے دونوں تجزیہ نگاروں کے خیالات ملاحظہ فرمائے. شام کے جو حالات ہیں اس میں ضروری ہے کہ سب سے پہلے امن و امان قائم ہو, اور اس کے لیے جو بھی حلقے ہیں متعلقہ حلقے ہیں انہیں کوشش کرنا چاہیے, اور ان علاقے کے ملکوں کو سمجھداری ضرور دکھانی چاہیے کہ جو شام کے پڑوس میں واقع ہیں. اسی کے ساتھ اگلی ملاقات اور اگلی گفتگو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ. بہت شکریہ.